शांति शांति। आदरणीय भूदेव, आदरणीय प्रिय ईश्वर भाई,
प्रिय सबिल दास जी, उपस्थित प्रिय भक्त मंडल, सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को वंदन करते हुए परमात्मा के सामने, आप सबके सामने एक बालक बन करके आपको सुना रहा हूँ, विचार दे रहा हूँ। अपने बालक का विचार आप सुने। भारतीय संस्कृति में कीर्तन की व्यवस्था, पदयात्रा की व्यवस्था, संगीत के माध्यम से कथा की व्यवस्था, जो कुछ भी है, मंत्र जाप है, सत्संग है, मंदिर की व्यवस्था, इसके पीछे जबरदस्त एक राज्य है। आप सबने विज्ञान का भी अध्ययन किया है। आज वैज्ञानिक भी हमारी हर व्यवस्था को बहुत ही उचित और वैज्ञानिक आधार पर समर्थन कर रहे हैं। हम ऋषियों का अनुभव ये अंतिम सत्य है। विज्ञान का प्रयोग अभी अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचा है। विज्ञान के आधार पर आपके समक्ष इसलिए प्रवचन करता हूं कि आज का पढ़ा लिखा समाज, आज के पठित पुत्र और पुत्री विज्ञान के आधार पर समझें कि भारतीय व्यवस्था क्या है। धर्म अनुभव है और धर्म आपको आगे बढ़ाता है। कहीं कोई खंडन नहीं है। विज्ञान भी आपके जीवन में हर तरह सुख लाने की कोशिश कर रहा है। विज्ञान का संबंध आपके बाहर से है और धर्म का संबंध आपके अंदर से है। विज्ञान का संबंध माइंड से है और धर्म का संबंध हार्ट से है। आपको इशारा करता जाऊंगा कि आज के वैज्ञानिक भी कह रहे हैं रावण के पास माइंड था, शक्तियां थी, सिद्धियां थी, लेकिन धर्म नहीं था, हार्ट नहीं था, फीलिंग नहीं थी। इसलिए उसके जीवन में शक्ति थी लेकिन सही रास्ता न मिलने से विज्ञान कहता है वो विनाशक बना, डिस्ट्रक्टिव बना। राम का जीवन जब देखते हैं तो माइंड तो है, साथ ही साथ संस्कार से धर्म भी है, अर्थात माइंड और हार्ट दोनों है। जब हम आप इस धरती पर आए पुत्र या पुत्री के रूप में, जिसे आप संस्कार कहते हैं, विज्ञान इसे कहता है सेकंड नेचर ऑफ प्रतिभा, हम जन्म के बाद जिस पर्यावरण में रहे वैसा हमें संस्कार मिला। जन्म से जब हम आप आए तो जो पशु धर्म है, जो एनिमल पैशन है, जिसके लिए कुछ सीखना नहीं पड़ता, वो चार चीजें हैं जो पशुओं में भी है, हमारे और आप में भी है। आहार की बात, निद्रा की बात, भय की बात और परिवार बढ़ाने के बाद, जिसे ऋषियों ने कह दिया आहार निद्रा भय मैथुनम च। जो चीज हम बिना सीखे जानते हैं वो पशु धर्म है। हम आप जब इस धरती पर आए तो चाहे हम ट्रेनिंग लें कि न लें, हम सत्संग करें कि न करें, हम साधना में जाएं या न जाएं, लेकिन आहार निद्रा भय और परिवार को कैसे बढ़ाना ये शेर भी जानता है, और बड़े प्यार से कहता हूँ गधा भी जानता है और आदमी भी जानता है। इसको कहा गया एनिमल पैशन और वैज्ञानिकों ने इसको सब दिया इंट्यूशन। हम आप जब इस धरती पर आए तो हमारे अंदर एनिमल पैशन तो है लेकिन 10% इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, और बुद्धि के द्वारा जो हमें संस्कार मिलता है उसका संबंध है सुनने देखने से हमारा संस्कार बनता है। आप जानते हैं हम आप नर्मदा किनारे हैं, गंगा किनारे हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन हिंदू संस्कार में माँ मानते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं। नर्मदा किनारे कुछ और लोग रहते हैं, उनके संस्कार में केवल पानी है। जन्म के बाद हमारा आपका संस्कार अच्छा बने इसलिए सबसे जबरदस्त हमारी संस्कृति में मंदिर का निर्माण है और भावना है, सत्संग की महिमा है, कीर्तन है। हमारे आपके अंदर स्वस्थ होकर जब इस धरती पर आए तो आज विज्ञान भी कहता है 1,55,00,000 कंप्यूटर जैसे सेल्स हैं, जो सुनते और देखते हैं उसमें वो संस्कार बनता है, और बड़े होने पर जो हमारे अंदर कंप्यूट हुआ संस्कार सेकंड नेचर, जब उसके विरुद्ध जाएंगे तो भय पैदा होगा और भय हमारी शक्ति को छीन करता है। इसलिए आज विज्ञान भी कहता है हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, जन्म के बाद आपका संस्कार क्या है वही पूछेंगे, और जब आप अपने संस्कार के विरुद्ध जाएंगे तो आपके अंदर जन्म से जो कंप्यूट हुआ है उसमें भय आएगा, अंतःकरण में एक भय पैदा होगा और भय के कारण आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए विज्ञान के आधार पर कहता हूं जब भी आप कोई कर्म करें, अगर आपके माता पिता, आपकी संस्कृति, आपके देश के नीति नियम के हिसाब से अगर प्रसन्नता आती है तो वो धर्म है। आपके अंदर भय आ गया तो सारी दुनिया के लिए कुछ भी हो लेकिन आपके लिए अधर्म है। अधर्म पर चलने से ही भय आता है, संस्कार के विरुद्ध जब चलेंगे तो भय आएगा। मैं किसी जाति पाति खंडन करना नहीं चाहता, कुछ ऐसे हैं जो गाय की पूजा नहीं करते, हम कितना भी समझाएंगे लेकिन उनका संस्कार उनके साथ है। हिंदू पागल भी हो जाएगा तो भी गाय के प्रति गलत विचार नहीं रखेगा। जन्म से जो संस्कार प्राप्त है वो गाय की पूजा प्रणाम करने का है। इसलिए ऐसे कई चीज शादी ब्याह की बात है तो विज्ञान के आधार पर मैं आप सबसे कहूंगा, आप जिसे मानते हैं उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाओ और उस धर्म का जो संस्कार है उसे स्वीकार करो, आधा मत स्वीकार करो। अगर आधा स्वीकार करोगे तो वेद विज्ञान दोनों कहते हैं कि आप अधूरे हो जाएंगे और अधूरा आदमी बड़ा खतरनाक होता है। विज्ञान भी कहता है आपके सामने एक डोल है, डोल में पानी रखिए, भर दीजिए और लकड़ी लाइए, आधी लकड़ी डोल के अंदर है और आधी डोल के बाहर, आधी पानी के अंदर है और आधी पानी के बाहर। वैज्ञानिकों का लॉ फ्रैक्शन, लकड़ी टेढ़ी नहीं है लेकिन आधी पानी में है आधी पानी के बाहर है, टेढ़ी है नहीं लेकिन टेढ़ी नजर आती है, यही विज्ञान कह रहा है। जिसको मानो आधा इधर आधा उधर नहीं तो खतरनाक हो जाओगे। जिसे मानो पूरी तरह मानो, हर संप्रदाय में हर धर्म में मानवता की बात कही गई है। जो लोग मेरे साथ रहते हैं आश्रम में वो जानते हैं कि हर जगह मैं प्रवचन के लिए जाता हूँ, आपके बीच में तो हूँ, आपका हूँ, मुस्लिम भी बुलाते हैं, ईसाई भी बुलाते हैं, अभी नवसारी में भी हिंदू मुस्लिम सम्मेलन हुआ, वहाँ भी जो मैंने कहा करीब 4,000 मुस्लिम भाई थे, स्वीकार किया कि स्वामी जी जो विज्ञान का आधार बताएं उसे कोई गलत नहीं कर सकता। इसलिए आपसे कहूंगा हमें दूसरों की नकल नहीं करनी है, आप अपने संस्कार से चलना है। विज्ञान भी कहता है इमिटेशन डेथ, दूसरों की नकल करते ही आपकी मौत हो जाती है। जब हमारी मौत हो गई तो उसमें जीवन कहाँ, उसमें प्रगति कहाँ। आप राम का जीवन देखें, किसका जीवन देखें, तो मेरे प्रिय आत्मन हमारी संस्कृति में प्रथम है माता पिता गुरु का आदर करो, ये हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। जब भी आप मुरारी बापू की कथा अवसर निकाल कर सुने होंगे तो बार बार उनकी कथा में माता पिता संत गुरुओं ब्राह्मणों की बात आती है, पूरी वैज्ञानिक है। हमारे संस्कार को अच्छा बनाते हैं। और अभी आपको बताया, पहले आप सुनते हैं फिर देखते हैं, और आपका विज्ञान भी कहता है जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता। हम सुनते हैं देखते हैं फिर वैसा संस्कार प्रकट होता है। जब हम मंदिर में जाएंगे तो हमारा ब्राह्मण अच्छा सुनाएगा। अभी अभी जो आपको बताया, हमारे अंदर 1,55,00,000 सेल्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा एनिमल पैशन के है, खाना पीना उठना बैठना सोना जागना लड़ाई झगड़ा खींचने की बात जानवरों के बात। जानवर में इंट्यूशन है, विज्ञान कहता है जिनमें इंट्यूशन है उनको आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते, वो कभी सुधरने वाले नहीं। शेर को कितना समझाओगे, विज्ञान कहता है घास नहीं खाएगा, और बड़े प्यार से कहता हूं गधे को भी कितना समझाओगे लेकिन लात मारना नहीं छोड़ेगा। इसी तरह से हमारे अंदर जो एनिमल पैशन है, हमारे अंदर जो पशुता है वो 90% है, 90% हमारे आप अंदर पशुता है, और 10% जो बुद्धि है उसका संबंध है पर्यावरण से, एनवायरमेंट से। विज्ञान कहता आफ्टर द बर्थ व्हेन यू मीट द एनवायरनमेंट बाय बर्थ यू आर द प्लस इफ एनवायरनमेंट इज माइनस मल्टीप्लाइड एंड एज यू नो व्हेन द प्लस माइनस यू मल्टीप्लाई दैट बिकम्स माइनस एंड व्हेन द प्लस इज मल्टीप्लाइड बाय प्लस दैट बिकम्स प्लस विज्ञान कहता है जन्म के बाद अगर हमारा बच्चा जिस पर्यावरण में रहा उसी तरह का संस्कार बनेगा। हमारा बच्चा जन्म से प्लस है, उसके अंदर जबरदस्त ऊर्जा है, जबरदस्त शक्ति है। बड़े प्यार से प्यारे बच्चों कहता हूं मैं किसी खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर तरह से लोग संपर्क में हैं, वाइस चांसलर भी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है, गवर्नर भी है, मंत्री भी है, किसान भी है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। लेकिन एक इशारा करूंगा, जो बच्चे 7 वर्ष तक अपने माता पिता के साथ रहे, 3 वर्ष तक रात्रि में माता पिता के पास सोए और माता पिता गुरु से बढ़ करके कोई अच्छा संस्कार नहीं देता, और जो लोग 2-2.5 महीने के बाद ही कहीं और रहे, एनवायरमेंट माइनस रहा, तो अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, महाराज जी लड़का पढ़ता नहीं, बड़े प्यार से पूछता हूं कि 3 वर्ष तक आप कहां थे और 3 से 7 वर्ष तक आप कहां थे। कहते माँ के पास, पिता के पास। अब फिर बड़े प्यार से पूछता हूं ये आपका बेटा 3 वर्ष तक कहां रहा। कहते मैं तो क्लास 1 ऑफिसर हो गया था, 2 महीने के बाद नौकरों में रहा। मैं नौकरों के खिलाफ नहीं हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट, लेकिन विज्ञान के आधार पर कहता हूं आप क्लास 1 ऑफिसर हैं, पत्नी चली गई क्लब में, बच्चों को छोड़ा, वो लोग अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन जो माँ बाप शिक्षा देंगे वो देगा नौकर, उसे दूसरी नौकरी मिली चला जाएगा, उसके मन में है प्रेम, उसके मन में है त्याग, त्याग की भावना माता पिता गुरु में जितनी है, माता पिता गुरु ही अपने पुत्रों को, पुत्रियों को, अपने शिष्यों को अपने से आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाकी विज्ञान से भी देखा गया बहुत मुश्किल है। तो जहां आप रहते हैं वो पर्यावरण माइनस है, उसी माइनस के कारण न कलेक्टर का बच्चा पढ़ रहा है, न क्लास 1 का और न वाइस चांसलर का। इसलिए जो मंदिर की बात है, हमारा ब्राह्मण, हमारे साधु संत जो संस्कार आपको दे रहे हैं कि पहले माता पिता को प्रणाम करो। जब विजय श्री का आशीर्वाद मांगने दुर्योधन गया तो मां ने कहा कभी तूने प्रणाम किया जो तुझे कोई आशीर्वाद दे। या सोचिए एक कुदरती है, है तो महाभारत का आधार, लेकिन विज्ञान भी कहता है हम जब भी किसी को प्रणाम करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, कुदरती ढंग से उसके अंदर से हमारे आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा, और माता पिता गुरु से बढ़ के कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता। ये मंदिर के विषय में वैज्ञानिकों ने कहा ए टेम्पल इज द ट्रेनिंग ग्राउंड टू अटेन द परफेक्शन फॉर द मैनकाइंड। ये भारत में मंदिर या कहीं अपने धर्म से, कहीं चर्च है, कहीं मस्जिद है, कालांतर में कुछ और बातें हो गई जिसे इस समय मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस धर्म में माता पिता के लिए आदर पूज्य भाव संस्कार के रूप में प्रकट हुआ, मैं किसी खंडन नहीं कर रहा हूं,
आप मेरे इशारे को समझ जाएंगे। जिन धर्मों में माता पिता के लिए पूज्य भाव का संस्कार नहीं डाला गया, उन्होंने बाप को मारकर ही राज किया। ये सत्य कह रहा हूं, मैं किसी खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जन्म से 90% हम पशु हैं। लेकिन जब अच्छा संस्कार नहीं मिलेगा रावण किसकी संतान है? ऋषि के। लेकिन संस्कार पर्यावरण अच्छा नहीं मिला, ताकत थी, शक्ति थी, सब कुछ था, लेकिन संस्कार अच्छा मिलने से वो विनाशक बना। राम का पर्यावरण संस्कार अच्छा रहा, इसलिए वो कंस्ट्रक्टिव बने। निर्माण की बात की, मानवता की बात की, समाज को उठाने की बात की, तो मंदिर की जो व्यवस्था है या मस्जिद की या गुरुद्वारे की, लेकिन इस समय मैं आपके सामने हूं, सब अपनी जगह ठीक है। हम कहीं भी जन्मे लेकिन 90% पशुता लेकर आए। इस पशुता को खत्म नहीं हम कर सकते, विज्ञान कहता है, लेकिन इसमें परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन के बाद रूपांतर होना चाहिए। विज्ञान की परिभाषा में उपस्थित प्रियात्मन, पानी के बर्फ के रूप में आना, ये परिवर्तन है, इससे चेंज। विज्ञान कहता है पानी से बर्फ, और बर्फ फिर गर्मी पा करके पानी के रूप में वापस। लेकिन दूध की व्यवस्था में जब दही हम बनाते हैं तो यह रूपांतर। परिवर्तन की व्यवस्था यह है, जहां से चले हैं फिर वापस पहुंच जाते हैं, पानी में से बर्फ, बर्फ से फिर पानी। रूपांतर की व्यवस्था है कि दूध एक बार दही के रूप में रूपांतरित हुआ, वो फिर वापस दूध नहीं बनेगा। दूध में से दही बनाकर मंथन करके मक्खन बनाया, अब लाख कोई कोशिश करे लेकिन मक्खन फिर दही नहीं बनेगा। इस व्यवस्था से मक्खन को घी बनाया, अब लाख कोई कोशिश करे लेकिन घी फिर मक्खन नहीं बनेगा। ऋषि मुनियों ने कहा जो तुम्हारे पास है पहले उसमें परिवर्तन लाओ। परिवर्तन लाने के लिए आपका जो पर्यावरण है, जब आप ब्राह्मण के पास जाएंगे, माता पिता के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, तो अच्छे शब्द सुनेंगे, अच्छा दिखाएंगे, और सबसे बड़ी व्यवस्था आपके मंदिर की है। आपके पास एक टेप है, टेप में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पसंद है, उसे आप निकालना चाहते हैं, तो दूसरे शब्दों का प्रयोग कीजिए, पहले वाले निकल जाएंगे। हमारे आपके अंदर जो पशुता है उसको निकालने के लिए माइंड को इंगेज करना पड़ेगा। हमारी दो विचारधारा है, एक पशु की और एक देवत्व की। तो विज्ञान भी कहता है पशुता में से देवत्व में आने के लिए हमें अच्छा सुनने का आधार होना बहुत जरूरी है। आप मंदिर में आए, अब विज्ञान स्वीकार किया, पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा आपको अच्छी चीजें सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी मूर्ति के रूप में। ये सुनने देखने से आपके अंदर जो पशुता है उसमें पहले परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आने के बाद फिर साधना के द्वारा रूपांतर होगा। इसलिए चाहे ऋषि मुनि की बात करें या किसी समाज की बात करें, हर समाज में है अच्छे लोगों से कथाएं सुनो। विज्ञान कह रहा है, पहले विज्ञान हंसता था, लेकिन हमारी कथाओं में है कि शिव जी हमेशा पार्वती को कथा सुना रहे। तो वैज्ञानिक ने सोचा क्या बात है, ये बात एकांत की है। एकांत में शिव नाम है यहां पति, पार्वती नाम पत्नी। अगर पति और पत्नी एकांत में अच्छी कथाएं सुनते और देखते हैं तो अभिमन्यु वाली बात आ जाती है। अभिमन्यु ने कहा, मेरे पिता ने जहां तक सुनाया वहां तक का संस्कार मुझे चक्रव्यूह का याद है, उसके बाद नहीं। अब विज्ञान इसी बात का आधार लेके कह रहा है, ये जो शिव जी हमेशा पार्वती कथा सुनाते इसके पीछे जबरदस्त है कि आपकी पशुता में रूपांतर आए धीरे धीरे, नहीं तो पशु जैसे हो जाओगे। इसलिए कथाओं का श्रवण के द्वारा सुनने का प्रचलन भारतीय संस्कृति में हुआ, और मंदिर के द्वारा दृश्य देखें। मंदिर जब राम देखेंगे तो राम का चरित्र भी याद आएगा। आप राम मंदिर में गए, आप किस मंदिर में गए, आप शिव मंदिर में गए, तो उन कथाओं से उनका चरित्र आएगा। सबका एक संकेत देता हूं, राम ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, एक से एक विकट से विकट परिस्थिति आई, लेकिन माता पिता गुरु का आशीर्वाद से चलते रहे। विकट से विकट परिस्थिति में हार नहीं स्वीकार किया, ये वैज्ञानिक बात है। बड़े घर में जन्म, कृष्ण जन्मे तो लेकर जाना पड़ा, और पांडव कृष्ण के साथ हैं। ये जो हमारे यहां भक्ति सरल और सहज बताई गई है, विज्ञान बेमान रहा है। राम ने अपने जीवन में शक्ति प्राप्त करके माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेकर चले, फिर भी विकट से विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा। अर्जुन पांडव सहित सब किसके प्रति पूर्ण समर्पित है। अब जरा विज्ञान की बात समझिए, आप शक्ति प्राप्त किए फिर भी सामने समस्याएं आएंगे। आपके जो परिचित है, विज्ञान परिचित मानता है, भक्त नहीं कहता। तो पहले विज्ञान की बात करें, विज्ञान कहता है जो परिचित है उसी में से आपकी समस्या का कोई न कोई हल करेगा। आप जब जिम्मेदारी लेकर चलेंगे तो समस्या बनाने वाले हैं और रहेंगे, लेकिन आपके परिचित में से कोई हनुमान की तरह, कोई नलनील की तरह आएगा और आपकी समस्या हल करेगा। हम लोग ये कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, आप शक्ति प्राप्त करके जिम्मेदारी उठाने के लिए जब तैयार रहेंगे तो अशुभ लोग आपका विरोध करेंगे। ये साधु संतों की बात, ये भक्तों की बात, लेकिन याद रखो, तुम्हारा ही कोई भक्त, तुम्हारा ही कोई शिष्य समाधान करेगा। फिर आइए, राम के सामने जब विकट परिस्थिति आई, हनुमान भक्त हैं, नलनील भक्त हैं, भक्तों ने राम की समस्या को हल किया। विज्ञान कहता तुम्हारा जो परिचित होगा, शुभ होगा, तुम्हारी समस्या हल करेगा। बात को समझिए, लेकिन अगर किसी अच्छे गुरु की शरण में चले गए तो अब विज्ञान कहता है एक शक्तिशाली व्यक्ति की शरण आप स्वीकार करते हैं फिर भी समस्या आएगी। लेकिन वो हल करेगा। हमारी संस्कृति का आधार पर है, आप जब अच्छे गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएंगे, समस्याएं तो आएंगे लेकिन परेशानी में से, समस्या में से गुरु खुद रास्ता आपको निकाल देगा। दोनों मिलाकर राम की समस्या का हल हमारी संस्कृति के आधार पर भक्तों ने किया और भक्तों की समस्या का हल गुरुदेव ने किया। ये कृष्ण और राम की बात वैज्ञानिक कह रहे हैं, इसलिए कहते सरल है, लेकिन जब विचार कीजिए, कई बार हमारे आपकी मन की स्थिति भी अर्जुन जैसी हो जाती है। भगवान हमारे साथ हैं, भगवान साथ हैं, यहां पर थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूंगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी अक्सर ऐसा प्रश्न उठा देते हैं। यहां विचार करो मेरे प्रिय आत्मन, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं उसको समझिए। आप अपने गुरु को मानते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, अपने ब्राह्मण को मानते हैं, अपनी संस्कृति को मानते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जा विचार करो पहला मंत्र क्या है। तू अपनी कमजोरी को दूर कर, तेरे विचार में जो कमजोरी आ गई है दूर कर अर्जुन। ये केवल अर्जुन की बात है, रे कृष्ण की हमारी आपकी बात है। जब आपके सामने समस्या आए तो विज्ञान कहता है मन अर्थात विचार प्रबल होगा और सहज होगा तो समस्या का हल हो जाएगा। कोई समस्या आते ही आप घबरा गए, आप परेशान हो गए, फिर कर्म नहीं करूंगा छोड़ के बैठ गए, तो हाथ पर जान दू, हाथ से दूर होगा कर्तव्य, आपका कर्तव्य आपसे अलग हो गया, आपने गांधी रख दिया तो गांधी रखने से, कर्तव्य छोड़ने से, भागने से समस्या हल होने वाली नहीं। कभी कभी क्लास वन ऑफिसर आते हैं, नाम वगैरह लेना ठीक नहीं, मेरे परिचित, उन्होंने कोई अपनी समस्या बताई, वो कहते हैं स्वामी जी आई वॉन्ट टू रिजाइन दी पोस्ट। मैंने कहा रिजाइन द वीकनेस। मैंने कहा कलेक्टर साहब आपके मन में जो कमजोरी आई है उसे रिजाइन करो, ये कुर्सी छोड़ने से कुछ होने वाला नहीं। यही आपसे कहता हूं, कर्तव्य पालन में किसी भी तरह विचार में कमजोरी आई उसका त्याग करो, कुर्सी छोड़ने से, गांधी वलक करने से, भागने से, परायणवादी बनने से कोई समस्या हल होने वाली नहीं। तो सबसे पहले आपसे कहता हूं कोई भी जिम्मेदारी मिले, आप गुरु की शरण में हैं या गुरु का आशीर्वाद है, आप ब्राह्मणों की शरण में हैं, आप मंदिर जाते हैं मंदिर की शरण में हैं, लेकिन जैसे भगवान कृष्ण की शरण में अर्जुन है लेकिन कमजोर हो गया। आप कहते मैं रोज मंदिर जाता हूं, तो क्या कमजोर मन लेके जाते हो? आप गीतांजलि पढ़िए, टैगोर ने क्या कहा, हे प्रभु कमजोर बन करके, लाचार बन करके मैं आपके द्वार पे नहीं आया हूं, केवल आपसे प्रार्थना करने आया हूं। कर्तव्य का पालन करते समय कभी मन कमजोर हो जाए या लाचार बन जाए तो उसे आप संभाल लेना, क्योंकि मन जब लाचार कमजोर होगा तो जीवन में कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। तो ये जो आप सत्संग करते हैं, मंदिर में आते हैं, एक क्षण आ सकता है जीवन में कि जब आप पलायनबाजी बन जाते हैं, भागने लगते हैं, लेकिन सत्संग के माध्यम से, साधना के माध्यम से विचार करो। एक बड़ी अच्छी बात आपको बताऊंगा, ये तो अंत में पता चला, आप अच्छी तरह महाभारत पढ़िए कि जब पांडव हैं शरण में
ये मनोवैज्ञानिक विचारधारा पर, लेकिन आधार मैं महाभारत का ले रहा हूं। अर्जुन भागा है लेकिन किसने भागने नहीं दिया, ये बात आ गई गुरु पर। अगर आप पूर्ण समर्पित हैं और गुरु जानता है कि आपका कर्तव्य ठीक है, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, समर्पित हैं, तो मैं भी ये बता दूं उसी परंपरा में हम भी आते हैं। अगर आप मेरी शरण में हैं, कोई ऐसा क्षण आया कि आप भागने की कोशिश करोगे तो समझा करके आपको वापस लाऊंगा और आपके कर्म में लगाऊंगा और जो तकलीफ होगी उसे दूर करूंगा। भागने से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। अब देख लीजिए, एक दो उदाहरण आपको दे दूं कि किस तरह हुआ। आप महाभारत पढ़िए, बड़े प्यार से कह रहा हूं और बड़े ध्यान से सुनिएगा। उदाहरण तो बहुत है लेकिन समय देख करके कहा गया कि आप भूलिए, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जितना जरूरी है वो बताऊंगा। जब गदा युद्ध हो रहा है, आप सब कहानी जानते हैं, गंधारी ने इतने लंबे समय तक हाथ को बंद रखा। अब ये विज्ञान कहता है अगर आप आंख को बंद रखोगे तो जबरदस्त शक्ति आएगी, मौन रहोगे तो जबरदस्त शब्दों में ताकत आएगी। यहीं पर थोड़ी शंकर की बात कर दो। शंकर बिना जरूरत देखते नहीं, भगवान शंकर जो मंदिर है, बिना जरूरत देखते नहीं, बिना जरूरत बोलते नहीं, और विज्ञान कहता है देखने बोलने में हमारी कितनी शक्ति बाहर जा रही है। जहां सोचो, चाहे महाभारत की बात करूं कि रामायण की बात करूं, परेशानियां बोलने के बाद ही शुरू हुई है। आप सुने लेकिन क्या बोलना है संस्कार धर्म देख करके करें। चाहे मैं द्रौपदी की बात करूं, चाहे मैं मां सीता की बात करूं, अच्छे अच्छे विद्वान बैठे हैं। दुख की शुरुआत कहां से हुई? अंधे की संतान अंधी। रामायण में दुख की शुरुआत कहां से हुई? मर वचन सीता तब बोला, लक्ष्मण को कह दिया तेरी नियत खराब है, कितनी बार ब्राह्मणों से सुने, ये बोलने से ही। और यही विज्ञान कहता, अगर जीवन में शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो देखने और बोलने से तुम्हारी शक्ति बहुत जाती है, बाकी खाने से ऐसे से भी जाती, लेकिन सबसे ज्यादा शक्ति। किसी की निंदा करोगे, किसी की बुराई करोगे, विज्ञान आ गया, उसमें आपका सत्यानाश होता है। इसलिए कभी भी किसी की निंदा मत करना। राम ने रावण की निंदा नहीं की, लेकिन शिशुपाल में इतनी शक्ति थी, जब कृष्ण की निंदा किया तो ये शिशुपाल और कृष्ण की बात पर मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं, उन्होंने शिशुपाल और कृष्ण का नाम हमें नहीं दिया, बात हमारी है। लेकिन वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो सत्य का, माता पिता गुरु का विरोध करेगा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो विरोध करेगा उसकी शक्ति का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आज वैज्ञानिक भी कह रहे हैं सत का विरोध करने से सत का विनाश नहीं होगा, तेरा विनाश हो जाएगा, इसलिए तू कभी सत का विरोध मत कर। और फिर कहते किसी का न विरोध कर, अपने निर्माण में लगा दे। हमारी कथाओं का आधार लेकर विज्ञान हमारे सामने आ रहा है। हमारे पास जो कुछ है दुनिया में कहीं नहीं है। राष्ट्रपति पद पर आने के बाद भी अब्दुल कलाम ने 20 बार कहा है कि जो कुछ हमारे भारत में दुनिया में कहीं नहीं है, हम हैं सूर्यमुखी या विचार के लिए, हम हैं सूर्यमुखी है, जबरदस्त हैं, इसमें से बहुत कुछ होता है। लेकिन अब्दुल कलाम ने कहा या विचार करो, सूर्य पहले भारत में निकलता है,
और फिर जाकर वहां डूबता है। सूर्य के हिसाब से हमें सूर्य को देखना है, और हमारी संस्कृति के नाम सूर्य संस्कृति है। अब विद्वान बैठे जानते हैं किसने भी ऐसे इशारा किया, हमारी संस्कृति का नाम सूर्य है। हमें अपने सूरज को सूर्यमुखी बन के देखना है, लेकिन हम लोग सूरजमुखी होकर रात में चांद देखने लगे, पता नहीं कहां से कहां चले गए। ये अब्दुल कलाम की बात कर रहा हूं। हमारी संस्कृति सूर्य संस्कृति है। अपनी संस्कृति को देखो, अपने धर्म को पहचानो। तो मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं महादेव में इतनी शक्ति क्यों आई कि बिना जरूरत देखते नहीं, बिना जरूरत बोलते नहीं, और सुबह मंत्र का स्मरण करते रहते हैं। अब आइए अपने पर, आप सब में भी जबरदस्त शक्ति है। हमारी शक्ति का जागरण मूलाधार से होता है। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनहद विशुद्धि, ये टेक्निकल बात पे नहीं जाता। हमारी शक्ति ऊपर चलती है और मूल का अवरुद्ध मूल बदा। हम जन्मे थे सर नीचे था, पैर ऊपर था, विचार करो। अब सिर ऊपर हो गया, पैर नीचे हो गया, तो शक्ति चली बोलने में, देखने में खर्च हो गई, इतनी खर्च हो गई कि यहां तक पहुंची नहीं, इसलिए गरीब हो गए। इसलिए महादेव में जो इतनी शक्ति आई, मनोवैज्ञानिक कहते हैं आपको और हमारे लिए, बिना जरूरत देखो नहीं, बिना जरूरत बोलो नहीं, और आपके अंदर शक्ति इतनी अर्जित हो जाएगी कि जरूरत पड़ेगी तो पूरा ब्रह्मांड नचा दोगे, और नहीं तो तुम नाचते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं। देख करके नाचने लगे, खा पी करके नाचने लगे। संकल्प इतनी शक्ति क्यों आई? एकांत में रहते हैं। आज विज्ञान कहता है एकांत में ऑक्सीजन बहुत मिलती है। जा विचार करो, और धतूरा खाते कड़वा, तो आपको थोड़ा से बता दूं, टॉप 10 में पहला नंबर गरीब बच्चे का आता है, गरीब घर के, क्योंकि उसके पास स्वादिष्ट भोजन नहीं है, रूखा सूखा रोटला है, और वो भी जरूरत से ज्यादा नहीं खाता। और हाथ जोड़ के कहता हूं, करोड़पति का बच्चा परीक्षा देने जाता है तो भी परीक्षा के समय भी बिस्कुट खाता रहता है, क्या बुद्धि काम करेगा। इसलिए कड़वा का मतलब यह है कि अगर जीवन में शक्ति को जागरण करना चाहते हो तो दिन में 4 बार खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा नियम से। एक बार में ज्यादा खा लोगे तो उसके दबाव से शक्ति जहां पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचती। ये विज्ञान का रहा, आप देख लीजिए, यहां बैठे हो, टॉप 10 में पहला दूसरा तीसरा नंबर या तो सब्जी बेचने वाला का लड़का लड़की है, या पट्टा वाले का है, एक भी कलेक्टर और डॉक्टर का लड़का नहीं आता, बाद में आते। ये विज्ञान की बात कर रहा हूं, मैं किसी खिलाफ नहीं कर रहा हूं। इसलिए जो प्रतीक उपासना है विज्ञान के, ये साकार जो उपासना है, एक बार मुझसे पूछा गया, अभी मैंने स्कूल में भी कहा था बच्चों के सामने, वही कहा, स्वामी जी ईश्वर है? मन का है तो आप दिखाइए। मैंने कहा आपकी श्वास है? कहा है। मैंने कहा श्वास आप दिखा दीजिए, तो श्वास का जो संचालन कर रहा है उसको भी मैं दिखा दूंगा। नहीं था उनके पास श्वास, ये अनुभव की बात है, दिखाने की बात नहीं। चुप हो गए। और भी कई प्रश्न उनके थे, मैंने उत्तर दिया, थोड़ा बहुत बच्चों को बताया। तो मेरे प्रिय आत्मन, भारतीय संस्कृति में पस्ता में से निकल करके पहले मनुष्य बनो। जिसे उनका मनुर्भव, आप देख लीजिए, जिन पशुओं को सींग है वो हिंसक है, जिनके दांत बड़े हैं वो भी हिंसक है। गधा पीछे लात मार करके अपनी हिंसा का प्रदर्शन करता, कोई सांप है कोई क्या है, लेकिन कुदरत ने हमें आपको न सींग दी, न सींग का दांत दिया, न सांप की तरह दिया, न गधे की तरह दिया, लेकिन विज्ञान का रहा है बिना सींग के बिना दांत के बिना लात के भी आदमी पशु से इतना गिर गया है कि शेर तो जरूरत पड़ने पर ही हिंसा करता है लेकिन आदमी बिना जरूरत दूसरे को सता रहा है। गधा तो पीछे वालों को लात मारता है लेकिन आदमी तो आगे वालों को लात मारता है, मेरे आगे क्यों चलता है, गधे से भी क्या गुजरता है। लेकिन जब मनुष्य बन जाओ तो जैसे गुलाब का फूल जब खिलता है तो उसमें सुगंध अपने आप आ जाती है, इसी तरह से सुनने देखने से जब आप मंदिर में आते हैं सुनेंगे और देखेंगे तो आपके अंदर सुगंध आएगी मानवता की, और उस मानवता की सुगंध की कोई जाति पाति नहीं होती, वो गौरव है। ये गुलाब का फूल मेरी वाड़ी का है लेकिन सुगंध सबकी है, एक गौरव है कि मैं गुजरात का हूँ, मैं पंजाब का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन इसमें जो मानवता की सुगंध आएगी वो सबकी है। इसलिए दुनिया में जितने अच्छे लोग हुए मेरा जो कुछ अध्ययन है उसके आधार पर कहता हूँ, आज रामायण का प्रचार, राम की पूजा, जो देश नास्तिकता कम्युनिस्टता रसिया में जितनी हो रही है, भगवान बुद्ध की पूजा बाहर जितनी हो रही है, क्यों हो रही, उनकी सुगंध के कारण, अच्छाई के कारण। वैज्ञानिकों से मेरा संपर्क है, वैज्ञानिक कहते हैं एक भारत की ऐसी संस्कृति है जो पूरे विश्व को अपना परिवार के रूप में देखती है, वसुधैव कुटुंबकम। भारत की संस्कृति में ब्राह्मण अंतरिक्ष की शांति की बात करता है, कोई ऐसा जो अंतरिक्ष की शांति की बात करे, इसलिए वैज्ञानिक भी कह रहे हैं प्रिय आत्मन अगर पूरे विश्व में शांति आप लाना चाहते हैं, पूरा विश्व हिंदू तो नहीं बन सकता लेकिन हिंदू विचारधारा को स्वीकार करके पूरे विश्व में शांति आएगी, इसलिए हमारी विचारधारा को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। हिंदू की जो विचारधारा है वो परम शांति, इसलिए हमारा सत्य प्रेम जो सनातन है वो सब जंग से लेकर आए। सत्य प्रेम बोलने के लिए हमें किसी स्कूल में नहीं जाना पड़ता, कहीं हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती, लेकिन जातिवाद समुदाय की बात ये कुछ और है जो यहाँ मैं उठाना नहीं चाहता। इसलिए आप जा विचार करें, आज आपके बीच में आया और भगवान आपके साथ है, जिस समय गदा दो रहा है, बातें तो बहुत है लेकिन इशारा करूंगा प्रभु किस तरह मदद करते हैं, बातें बहुत है लेकिन एक इशारा समझ जाइए, अगर अच्छी तरह महाभारत पढ़े तो वहां पर आप देखेंगे कि गदा युद्ध में माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद बड़ी कठिनाई आ रही थी, आप जानते हैं पढ़े होंगे या जब सीरियल आई होगी तब देखे भी होंगे, भीम के सामने वहां इशारा भी किया, नहीं नियम है, नियम है, वो इशारा आप सब समझते हैं, मैं गुरु हूं उस मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहता। भरी सभा में दुर्योधन ने क्या कहा था अब वो मैं नहीं बोलना चाहता, इसलिए जब इसने भरी सभा में, ये समझने की बात है, जब इसने भरी सभा में मर्यादा का पालन नहीं किया तो हे भीम मर्यादा का पालन करके तुम भीम को नहीं बचा सकते। इशारा किया, कोई पांडव नहीं तैयार वहां कहने के लिए हुआ, सुने थे सब, वो शब्द मैं कहना नहीं चाहता क्यों शब्द के साथ विचार और जगह की, इसलिए हमारे यहां सबको माँ बोलते हैं बेटी बोलते हैं, कुछ और बोलेंगे तो गलत जगह का ख्याल आ जाता है मनोविज्ञान। इसलिए भारत में कितनी चीजें बड़े धन से कही गई। विचार कीजिए, हम अपने बालक को रामकृष्ण की पूजा क्यों सिखाते हैं? हम अपने बालक को अम्बा जी की पूजा क्यों सिखाते हैं? उसके पीछे एक रहस्य है। इन पूजाओं में एक मनोवैज्ञानिक बात है कि समय आने पर शरीर में कुछ ऐसी जगह है जिन्हें देख करके विकार आता है। लेकिन विज्ञान कह रहा है शुरू से जब ये संस्कार दिया जाएगा तो 16 साल के बाद जब हम परिवार में घूमेंगे, रिश्तेदारी में घूमेंगे, लड़का हो कि लड़की, लेकिन जन्म से अगर ये संस्कार रहेगा तो हमारे आपके शरीर में कुछ जगहें ऐसी हैं तो संस्कार के कारण खराब विचार नहीं आएगा। इसलिए हमारे यहाँ जन्म से ही पूजा पद्धति बताई गई। हमारी बेटी राम की पूजा करे, हमारा पुत्र अम्बा जी की नारी की पूजा करे, ताकि 16 साल के बाद जब कभी नारी देखे तो गलत विचार नहीं आए। हमारी बेटी कोई पुरुष देखे तो गलत विचार नहीं आए, क्योंकि 5 साल के बाद धीरे धीरे वो हमारा जो है खत्म नहीं होता लेकिन उसमें रूपांतर हो जाता है। आप खत्म नहीं कर सकते, केवल रूपांतर। तो रूपांतर की प्रक्रिया में ये हमारी पूजा पद्धति 5 साल से बताई। गायत्री मंत्र का जाप करो, ब्राह्मण के पास जाओ, दान करो, पुण्य करो, सब इसीलिए है। दूसरा विचार करो, कोई पांडव तैयार नहीं हुआ लेकिन कृष्ण ने इशारा किया। क्यों इशारा किया? उन्होंने उनको पूर्ण स्वीकार किया था। अब मनोविज्ञान क्या कहता है? मैं आपकी अपनी बात करता हूं, हमारा पुत्र है कि पुत्री है कि हमारा शिष्य है, उनसे भूलें हो सकती है, लेकिन जिसे हमने स्वीकार किया है नियम तोड़ करके भी उसका भला करना पड़ेगा। इसलिए हमारे बिंदु ने कह दिया कि प्रभु का मान गया कि नहीं गया, लेकिन भक्तों के मान को उन्होंने हमेशा बना करके रखा। अब ये है, इसी तरह कितनी बातें हैं, अश्वत्थामा हतो नरो की बातें कितनी। आज विज्ञान इसके आधार पर एक ही बात करता है। हे मेरे बैठे हुए माता पिता, मैं आपके लिए गुरु के रूप में हूं, मैं अपने को मिलाकर आपसे कहता हूं, बैठे हुए माता पिता और गुरु, जिसे तुमने स्वीकार किया है कुछ भी हो जाए उसके जीवन को बनाने की कोशिश करना, अलग करने की कभी कोशिश नहीं करना, कभी नहीं करना अलग कर। तो घर से निकल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये आज पूरा विश्व कह रहा है। तो यहाँ जो बैठे माता पिता है, बच्चों से भूल हो सकती है लेकिन भूल को ठीक कैसे किया जाए, अगर आप कर सकते हैं करें, नहीं तो आपका महात्मा बैठा, आपका ब्राह्मण बैठा है, हमें पूरे शास्त्रों ज्ञान है, हर तरह ज्ञान है, अगर आप स्वयं ठीक कर सकते हैं करें, और नहीं तो मेरे पास आइए, लेकिन बच्चों को घर से निकाल करके कोई अपराध न कीजिए। स्वामी जी मैं इसको निकाल दूंगा। क्यों निकालोगे? कई बार लोग कहते महाराज जी मैं तो तलाक लूंगा। मैंने कहा जब सहनाई की धुन बज रही थी उस समय तलाक की बात क्यों नहीं आई? तब मुझे बुलाया था ईश्वर जी को, मनीषाधन को, आप तलाक लेने के लिए क्यों पूछते? जब सहनाई बज रही थी न ईश्वर आए न मनीषाधन, और आज तलाक की बात आई। जानते हो मनोविज्ञान कहता तुम वड़ील हो, ब्राह्मण हो, गुरु लोग, तुम समाज के हाईएस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन सोसाइटी, तुम समाज को उच्चतर हो। वो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ब्राह्मण और साधु के पास आते। ये तो गुरु जी ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, इसलिए तलाक ले रहा हूं। तो गुरु जी से पूछ करके तूने शादी की आशीर्वाद दिया था? कितने लोग मेरे पास आए, मैं अपने घर में कह रहा महाराज जी मैं नदी में डूब के मर जाऊंगा। क्यों? जहां मैं चाहता हूं वहां पिताजी शादी नहीं करते। तो मैंने कहा जब मेरे से पूछ करके प्रेम नहीं किया तो डूबने के लिए क्यों मेरे पास आए? जाके डूब जाते, मुझे दबा रहा है।
कि मैं तेरे पिता का हूं, मैं नहीं कुछ हो जाए। तो यही मैं आपसे कहता हूं, एक महाभारत की बात मनोवैज्ञानिक ढंग से कहना चाहूंगा, भगवान ने करे कैसा समय हमारे आपके जीवन में आए। जब कुंती ने कहा है, मैंने कहा तो रसिया वाले पढ़ रहे और हमें बता रहे हैं सीखो सीखो, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, लर्न फ्रॉम द पास्ट, डील विद द प्रेजेंट एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट। तुम्हारा जो अतीत का इतिहास है, यही रामायण माँ, तुम्हारा जो अतीत का इतिहास है उसे पढ़ो, उसे दोहराओ मत, उससे सीख करके अपने जीवन को उज्जवल बना लो। क्यों परेशानी हुई उसके कारण का पता लग जाएगा तो तुम नहीं गिरोगे। ये बात मुझे अच्छी लगती है, रामायण महाभारत से सीखना है, उसमें जीना नहीं है, अतीत से लेना है। एंड आज इज टू ऑफ लाइफ डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तक है, उन्होंने इसी बात को इस ढंग से लिखा है, नया मकान बनाओ, नई कोठी बनाओ, लेकिन पूरे मकान की जो चीजें लायक है उसे भी लगाओ। विज्ञान कहता है तुम्हारी रामायण महाभारत की बात तुम जानो, लेकिन आज वर्तमान में तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए जो बातें ठीक लगते उसको स्वीकार करो, पूरी तरह से इनकार मत करो, नहीं तो नहीं इधर करो न उधर करो। मैं भी आपसे कह रहा हूं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरा विचार अगर आपको उठाता है तो स्वीकार करो, नहीं मुझे वापस कर लो, अंगासो ले जाकर नदी में डाल दूंगा। लेकिन पूरा कि नहीं, मैं तो संत मानता ही नहीं, मैं तो ब्राह्मण मानता नहीं, तो फिर क्या करोगे, किसके पास जाओगे, कहां जाओगे, पहले सुनो समझो। इसलिए आप विचार करके देखो, ऐसी लाचारी ना आए। जब कुंती ने कहा, ये मनोविज्ञान की बात बताता, तो मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, सब कहानी बताया, कहा मां भरी सभा में तू थी, ये मनोवैज्ञानिक बात है, सीखने की बात है, मां तू भरी सभा में थी, मुझे सूत पुत्र कहा गया, तू तो जानती थी भाई किसका पुत्र है, वहां क्यों नहीं बोला, तू इतना तो कह सकती थी कि मैं जानती हूं कि सूत पुत्र नहीं है, लेकिन वहां पढ़े लिखे लोग बैठे थे, वो बाद में पूछते तू कैसे जानती है, तेरे पास जवाब नहीं था, इसलिए लाचार होकर के तू बैठी रही और नहीं बोला। तो उस भरी सभा में अपनी इज्जत बचाने के लिए जानते हुए तू लाचार बनी, हां पुत्र, और आज अपने पुत्रों की रक्षा के लिए लाचार बनी है, उस दिन भी लाचार बनी थी, आज भी लाचार बनी है, और मैं भी जिसका दूध पी करके तुमने, मैं कितने दिन का था जब तूने फेंकी थी, कहा 2 घंटे, तो तेरा तो मैंने दूध भी नहीं पिया। हे मां मैं तुझे प्रणाम करता हूं, अगर तेरा 1 दिन भी दूध पीता तो शायद मैं वो छोड़ करके तेरे पास आ गया। 1 दिन भी तूने दूध नहीं पिलाया, लाचारी में भरी सभा में बैठी रही, और आज जब कुछ इधर से सुना कि कल कुछ न कुछ हो जाएगा, वो सब आप जानते हो, तो आज भी तू लाचार बन के आई, फिर भी तूने मुझे जन्म दिया, बता तेरे कितने पुत्र, कहते 5, फिर बता तेरे कितने पुत्र, 5, एक बार और मां बता तेरे कितने पुत्र, कहा 5, तो अभी अभी तो मेरे लेके 6 थे, जा कल अर्जुन और कर्ण में लड़ाई होगी, मैं वीर गति प्राप्त किया तब भी तेरे 5 रहेंगे, और अर्जुन भी वीर गति प्राप्त किया तो भी तेरे 5। अब ये मनोविज्ञान क्या कहता है, सत्य को स्वीकार करने के लिए जबरदस्त ताकत चाहिए, कहने के लिए भी जबरदस्त ताकत चाहिए। इसलिए एक बात कही गई है कि सत्य के छिपाने में वो बड़े प्यार से, सत्य के छिपाने में ही महाभारत शुरू होता है, नहीं तो कोई ताकत नहीं थी। इसलिए मैं आपसे नहीं कहूंगा कि भरी सभा में बोलो, लेकिन सत्य को, आपकी बात हो या आपके बेटे की बात हो, मेरे प्यारे बच्चों जो सत्य है मां के सामने, मां को इतना ऊंचा स्थान किस लिए दिया गया, आज मनोविज्ञान भी कहता है। मेरे प्यारे बच्चों, मनोविज्ञान कहता है लायक को सारी दुनिया गले लगाएगी, लेकिन नालायक को दुनिया में दो ही गले लगाते हैं, एक मां एक गुरु, बाकी तीसरा कोई नहीं लगाता। नालायक से नालायक को ही दो ही गले लगाते हैं। मैं कभी कभी सरकार के आदेश पर जेल में भी लगकर देने जाता हूं, वहां पूछता हूं कैदियों से, क्या तू अपने बच्चे को चोर बनाएगा? नहीं। क्यों नहीं बनाया? कहा इसकी मां कहती थी, तू तो परिस्थिति बस डाकू चोर बना, लेकिन मेरे बच्चे को चोर बनाएगा तो मैं हाथ घात करके मर जाऊंगा। तो मां के कारण ही चोर का बच्चा चोर नहीं बनता, डाकू का बच्चा डाकू नहीं बनता। चंदन चोर की बात मैं जानता हूं, जबरदस्त चंदन चोर था, लेकिन उसके बच्चे उसकी पत्नी के आधार पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, माँ 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 क्या चीज। और एक बात और कह दूं, माँ को दुखी करके जो ये संन्यास लिए हैं उनका भी सत्यानाश हो गया, अब मैं कहूंगा। इसलिए संन्यासियों के लिए भी है, संन्यास लेने के बाद पता चले कि माँ दुखी है तो आश्रम में लाओ, जैसे नारेश्वर वाले लाए, लाओ पहले माँ को खिलाओ। इसलिए मेरे भारतीय संस्कृति के मेरे प्यारे बच्चों, स्वप्न में भी कभी अपने माता पिता और गुरु का, ब्राह्मण का, उड़ेलों का अनादर न करना। आएगी एक से एक परिस्थिति, जरूरत पड़ेगी अश्वत्थामा हथौड़ा कुंजरो भी हो जाएगा, जरूरत पड़ेगी आप ना बोलोगे तो भी, लेकिन याद रखिएगा ये माँ और गुरु और ब्राह्मण ये कुछ भी करेंगे लेकिन आप ऊंचे उठाएंगे। वही संस्कार प्राप्त करने के लिए ये हमारा मंदिर है, जहां पर आप सुनेंगे, जहां पर देखेंगे। और इसलिए ब्राह्मण और साधु एक घर के, संन्यास लेने संन्यास हम बुराइयों से लेते हैं, घर से नहीं। और घर से संन्यास लेना तो आइए ईश्वर जी इन सबको दो महीने हरिद्वार ले चले, वापस करें फिर वही रोना। कपड़ा आपको नहीं खरीदना पड़ेगा, पहना दूंगा। बकरी को एक बात, बकरी को शेर की खाल पहनाने से शेर नहीं होगा, लेकिन शेर को अगर बकरी खाल पहना दीजिए तो बकरी खाल निकाल दीजिए शेर हो जाए। आप सब शेर हैं, कुछ लोगों ने सुना सुना के आपको बकरी बना दिया, बाकी आप बकरी होते तो मैं इतना प्रवचन करने वाला नहीं था। आप तो शेर हैं, आप में शक्ति है, उस शक्ति को जगाने के लिए आपके बीच में आया। हनुमान जी भी कहते हैं समुद्र कैसे पार करूं, बाल समय रवि भक्ति लियो तब तीन लोक भय हो दिया। उन्हें याद दिलाया गया, बाल अवस्था भी याद करें, मैं आपको कोई नई चीज देने नहीं आया, हम सब परमात्मा की संतान है। और विज्ञान भी कहता जो जहां था उसका गुण लेकर आया। आप राम मानते हैं तो पूरा जगत राम में है, आप किस मानते हैं पूरा जगत किस में है, आप शिव मानते हैं पूरा जगत शिव में है। हम सब परमात्मा की संतान है और विज्ञान से सिद्ध कर दो, थोड़ा क्षमा कीजिएगा। मेरा जन्म न माँ से है न पिता से, दोनों से है। अब वही मर्यादा में बोल रहा हूं, माता पिता एक व्यवस्था से, धर्म की व्यवस्था से मिले। मेरे पिता के अंदर विस्फोट हुआ, नाम नहीं लूंगा आप समझ जाएंगे, उस विस्फोट को हमारी माँ ने धारण किया। इसके बाद कुदरत ने शून्य में से लार्वा बनाया, विस्फोट में शून्य है, फिर लार्वा है, फिर मेढक है, फिर छठे महीने में वानर है, सातवें नर नारी बनते हैं। जब हमने कहा एकम सत विप्रा बहुधा बदल, शून्य की बात की, अस्तित्व की बात की, टोटल की बात की, तो विज्ञान भी कहता भारत की फिलॉसफी बड़ी ऊंची है। शून्य में से लार्वा बना, लार्वा से मेढक बानर बना, तो जो मूल होता है उसका विनाश नहीं होता, वो भले आकार धारण करे। इसलिए हम सब परमात्मा से आए हैं, आकार चाहे मेढक का हो कि बानर का हो कि मनीषानंद का हो कि ईश्वर का हो, ये प्रबुद्ध है, ये सर्वोच्च अवस्था है, लेकिन सब में वह अस्तित्व मौजूद है। ये उत्क्रांति का सर्वोच्च अवस्था है, ईश्वर और मनीषानंद परमात्मा की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें परमात्मा प्रकट हुआ, उनमें प्रकट नहीं हुआ, लेकिन हम में प्रकट हुआ है। इसलिए कहता हूं सब में परमात्मा है, उसके अस्तित्व को देखो, उसको सुन को देखो, तो किसी से राज देश ईसा नहीं होगी। ये जो आपकी शक्ति गलत काम में खर्च होगी वो गलत काम में खर्च नहीं होगी। या विचार करो, विज्ञान भी कह रहा कि भारत की एक एक बात है। तो आज आपके बीच में आया, हमारे प्यारे भगत भाई हैं, बैरन भाई हैं, रखोड़ भाई हैं, सुरेश जी हैं, हमारे ईश्वर जी हैं, इनके दर्शन के लिए तो लालायत रहता हूँ। ये तो अंदर भी ईश्वर है बाहर भी है दोनों। ये गरुआ कपड़ा नहीं पाने अच्छा हुआ, क्योंकि अभी ये बहुत मुश्किल हो गया है। ये आपको बता दूँ बहुत अच्छे है, भगत भाई भी है, हमारे बैरन भाई भी है, सुरेश भाई भी है, यहाँ जितने भी हैं आप लोग मेरे स्वरूप हैं। एक बार मैंने कह दिया स्वामी जी, आपने कहा सब प्रजा जितनी बैठी आपके स्वरूप है, तो आप सबको जानते हो। मैंने कहा मेरे शरीर में कुछ चीजें ऐसी हैं, मेरा है लेकिन नहीं जानता। मैं जानता हूं कि नहीं जानता, लेकिन परमात्मा के नाम से सबको जानता हूं। सब मेरे अपने हैं, ऐसे जानता हूं कि नहीं जानता। आप सब मेरे हैं, और इसे आपका बालक बन करके सुनाया। सुनाने में कोई त्रुटि हो तो बालक हमेशा सीखने की कोशिश करता है। मैं सुनाता हूं इसलिए आप भी मुझे सिखाइए, कहीं गलती हो सुधारो। आपका बालक आपके हृदय में रहे। और फिर से कहता हूं आप अपने अंदर के बालक को मत मारो, सहजता को, सरलता को। और बालक हर काम करता है लेकिन कल की चिंता नहीं करता। तो मेरे प्यारे, कल की चिंता में आज मत खराब करो, इसलिए हर क्षण बालक रहो। और वो बालक जैसे धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ जाता है, बाल वृद्धि रख करके, सीखने की वृद्धि रख करके, कल की चिंता न करो, मंदिर में आओ, पूर्ण समर्पित हो जाओ। मैं आपसे कहता हूं कहीं आपका कुछ भी होगा, लेकिन जहां पूर्ण समर्पण है, मेरा बेटा, मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, मेरा बेटा खून करेगा, सारी दुनिया मेरे बेटे को खूनी कहेगी, लेकिन मैं वकील के पास जाऊंगा। किसी परिस्थिति में मेरे बेटे ने खून किया, लेकिन हे परमात्मा बताइए माँ का क्या धर्म है, पिता क्या धर्म है? कहते बचाना। तो याद रखिएगा, माँ का धर्म माँ जानती है, लेकिन बचाना धर्म है। पिता जानता है, बचाना धर्म है। और गुरु तो माता पिता के साथ गुरु भी है, इसलिए अगर माँ भी नहीं बचा सकती, पिता भी नहीं बचा सकता, तो गुरु बचा लेगा। ये आप मैं आपको बताऊँ, वो बचा लेगा। ब्राह्मण भी गुरु होते, ये लोग गुरु हैं, हम लोग थोड़े परम गुरु हैं। तो पहले ब्राह्मणों के पास आओ, वहाँ समस्या हल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इनको लेकर मेरे पास आओ, दोनों मिलकर समस्या हल कर ले। दोनों मिलकर समस्या हल कर ले। मंदिर बिल्कुल वैज्ञानिक बात है, भारतीय संस्कृति है। अपने बच्चों को सूरवीर बनाना चाहते हो, कठिन से कठिन समस्या में से निकलने की बात सिखाना चाहते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों, माता पिता का आदर करते हुए मंदिर में आओ, वड़ेलों का आदर करो। और जो मैंने थोड़ा आज विचार इस प्रांगण में दिया सुगंध के रूप में, ये जाति पांति की बात नहीं है, ये सुगंध अपने आ गई तो समाज मत में आप रूपांतर हो जाएगा। रूपांतर करने कोई जरूरत नहीं, गर्भ में अभिमन्यु ने जहां तक सुना जाना, तो आप तो जागृत है, लेकिन गर्भ में सोया हुआ मेरी बेटियों का आने वाला, आने वाली संतान अगर गर्भ में ही है, तो भी ब्राह्मण साधुओं का आदर करके कथा सुना करो। हमारा विज्ञान कहता है आम का बगीचा लगाना है तो साफ करो, अच्छा पौधा लाओ, समय पानी खातर दो और रखवाली करो। और कांटे का झाड़ लगाना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर अपने बच्चों को लायक बनाना है तो ब्राह्मणों की, संतों की जरूरत है। हम सिंचन करेंगे, संस्कार का रखवाली करेंगे। और बड़े प्यार से कहता हूं, अगर रावण और दुर्योधन बनाना है तो न ब्राह्मण की जरूरत है न गुरु की जरूरत है, वो अपने आप हो जाएंगे। बावर का झाड़ अपने आप हो जाएगा। ये मंदिर बना, आप लोग यहां बैठे, इतने अच्छे अच्छे लोग आए, इसीलिए आए कि हमारे आने वाले बच्चे हमारी संस्कृति के आधार पर सबसे ऊंचे बने, सबसे आगे जाए। और महाभारत की एक बात मैं भीष्म पितामह की सुनाना चाहूंगा। भीष्म पितामह ने कहा अगर अच्छी तरह महाभारत पढ़े हो तो, नहीं बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं भीष्म पितामह को पूछता हूँ, लेकिन एक जगह स्वीकार किया कि गद्दी के लक्ष्य में हर अपराध में मेरा भी हिस्सा रहा है। अगर हसनापुर का देश का लक्ष्य मेरे सामने होता तो शायद अपराध न होता। इसलिए जो मैं प्रवचन कर रहा हूँ व्यक्ति निर्माण के, और व्यक्ति का जब निर्माण होगा लोग मुझसे कहते हैं, और विज्ञान के आधार पे कहता आप समझ जाएंगे। अच्छा प्रधानमंत्री कब मिलेगा? जब अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब होंगे? जब प्रजा अच्छी होगी जो चुनती है। प्रजा कब अच्छी होगी? जब हमारी नारी समाज का संस्कार अच्छा होगा। इसलिए देश को बनाना बिगाड़ना ये आपके हाथ में, जो सामने नारियां बैठी हैं। और कोई अपराध हुआ तो उसके पीछे आपका हाथ रहेगा। मैं विज्ञान का आधार पर कह दूं, हमारा हाथ नहीं, पुरुषों का हाथ नहीं, ये आपका रहेगा, ये आपको बता। इसलिए देश का निर्माण करना है तो अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो। अच्छी जगह नहीं और नहीं घर से जा सको तो पति से आज्ञा लेकर ब्राह्मण साधु हफ्ते में एक दिन घर बुला करो, और फिर आपके संतान अगर बाबर की बनी तो मेरे पर आरोप लगाना, मेरे पर सब लायक बनेंगे, सब लायक बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तो प्रणाम करते हुए, मंदिर को प्रणाम करते हुए, ईश्वर को सबको प्रणाम करते हुए, मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि भारतीय सांस्कृतिक आधार पर खूब खूब आपको जगाता रहूँ, दौड़ाता रहूँ, और मेरी भारतीय संस्कृति का पताका इतना ऊंचा फरके, इतना ऊंचे फरके कि विश्व के लोग हमारी सफलता को देख करके उनकी पगड़ी टोपी हेड पीछे गिरे, आगे नहीं गिरे। यही मेरी भावना है। हरिओम तत्सत। सबको वंदन।